अधिकांश आवृतबीजी पौधों के बीजों में भ्रूणकोश उपस्थित होता है। ये बढ़ते भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। द्विबीजपत्री में भ्रूणकोश का स्थान मांसल बीजपत्रों द्वारा ले लिया जाता है। मोनोकोटाइलडॉन में भ्रूणकोश परिपक्व बीजों में भी बना रहता है और भोजन का भंडारण करता है। भ्रूणकोश ऊतक कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है और इसमें प्रोटीन और लिपिड भी होते हैं। भ्रूणकोश की मुख्य विशेषताएं। भ्रूणकोश का विकास भ्रूणकोश में ट्रिप्लोइड कोशिका 3N से होता है। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक दो ध्रुवीय केंद्रक द्वारा निर्मित के साथ जुड़कर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक पेन और एक त्रिगुणित कोशिका बनाता है। इस प्रक्रिया को ट्रिपल फ्यूजन के रूप में जाना जाता है। एंडोस्पर्मिक कोशिकाएं अधिकतर त्रिगुणित होती हैं, लेकिन कुछ पौधों में वे द्विगुणित वॉटर लिली या पॉलीप्लोइड 15N तक हो सकती हैं। कुछ द्विबीजपत्री पौधों में परिपक्व बीजों में भ्रूणकोश में भंडारित भोजन होता है। उन्हें भ्रूणकोशी या एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैस्टर सेम मटर चने के बीज में भ्रूणकोश विकास के दौरान पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है और भोजन दो बीजपत्रों में संग्रहित होता है। इन्हें एक्सोगुमिनस बीज कहा जाता है। भ्रूणकोश में खाद्य भंडार के रूप में अधिकतर स्टार्च होता है, लेकिन इसमें वसा भी हो सकती है। जैसे कैस्टर भ्रूणकोश सुप्तावस्था के दौरान बीजों को पोषक तत्व प्रदान करता है। एंडोस्पर्म में साइटोकिनिन जैसे कुछ हार्मोन भी होते हैं और कोशिका विभेदन में मदद करते हैं। गेहूं मक्का जौ मक्का जैसे अनाजों में भ्रूणकोश भोजन का मुख्य स्रोत है। नारियल पानी तरल भ्रूणकोश का उदाहरण है। ब्रेड तैयार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सफेद आटे में केवल गेहूं के बीज का भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश की बाहरी परत एल्यूरोन परत होती है। यह एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करता है जो एंकुरों द्वारा उपयोग के लिए भ्रूणकोश में उपस्थित स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। ऑर्किड के बीजों में भ्रूणकोश की कमी होती है। भ्रूणकोश का कार्य भ्रूणकोश भ्रूण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और भोजन भंडार को संग्रहित करता है। वे पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं और विकासशील भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। एंडोस्पर्मिक ऊतक जीन अभिव्यक्ति और बीज अंकुरण को नियंत्रित करते हैं। भ्रूणकोश पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार संकेत उत्पन्न करता है और भ्रूण के विकास को नियंत्रित करता है। एंडोस्पर्म में साइटोकिनिन होता है जो सेलुलर भेदभाव को नियंत्रित करता है। यह आनुवंशिक रूप से बेमेल क्रॉस से बीजों के गर्भपात को प्रेरित कर सकता है। बीज अंकुरण के दौरान भ्रूणकोश के कार्य भ्रूणकोश भ्रूण की सुरक्षा में मदद करते हैं। ये भ्रूण को सभी आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके मदद करता है। ये बीज के अंकुरण और निषेचन के दौरान बाधा के रूप में कार्य करता है और उसकी रक्षा करता है। ये कार्य विभिन्न पौधों की प्रजातियों में भिन्न भिन्न होते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि भ्रूणकोश पर्यावरणीय परिस्थितियों को समझ सकते हैं और उसके अनुसार बीज के अंकुरण को नियंत्रित कर सकते हैं। बीज अंकुरण के बारे में ये बढ़ा हुआ ज्ञान जैव प्रौद्योगिकी और बागवानी क्षेत्रों में मदद कर रहा है। भ्रूणपोषीय विविधता के आधार पर बीजों के प्रकार भ्रूणपोषीय गतिविधि के उपयोग के आधार पर उन्हें निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया गया है। एल्ब्यूमिनस बीज इस प्रकार के बीजों को भ्रूणपोष से पोषण मिलता है और अंकुरण के दौरान भी यह वैसा ही रहता है। एक्सोगुमिनस बीज इस प्रकार के बीज भ्रूणपोष के कार्यों का पूरी तरह से उपयोग करते हैं। वे प्रकृति में गैर एंडोस्पर्मिक बीज हैं। घास में भ्रूणपोष का विकास घास के बीज या कैरियोप्सिस की उत्पत्ति एक एकल बीजांड वाले मोनोकापेलरी अंडाशय से होती है और इसमें प्रमुख भंडारण ऊतक एंडोस्पर्म होता है। अधिकांश घास की फसल प्रजातियों यानी अनाज के लिए फसल का मूल्य काफी हद तक मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शब्दों में भ्रूणकोश द्वारा निर्धारित होता है। जब भ्रूण थैली की केंद्रीय कोशिका में एक शुक्राणु कोशिका नाभिक द्वारा दो ध्रुवीय नाभिक निषेचन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वे भ्रूणकोश के निर्माण की ओर ले जाते हैं। दूसरे शुक्राणु कोशिका केंद्रक द्वारा अंडाणु के निषेचन से द्वितीयक भ्रूण यानी 2N का निर्माण होता है। भ्रूणकोश का मुख्य कार्य विकासशील और बाद में अंकुरित होने वाले भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करना है। एराबिडोप्सिस सहित कई प्रजातियों के विपरीत घास का भ्रूणकोश एक सतत बीज संरचना है। ये मानव और पशुधन पोषण के लिए कैलोरी का सबसे प्रमुख स्रोत है और अनगिनत निर्मित खाद्य पदार्थों वस्तुओं और जैव ईंधन के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। भ्रूणपोष के प्रकार भ्रूणपोष उनके विकासात्मक पैटर्न के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोषों को जानने से पहले हमें भ्रूणपोषों के निर्माण के बारे में जानना चाहिए। ये दोहरा निषेचन नामक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। प्रत्येक पराग कण में 2 नर युग्मक होते हैं। जब उनमें से एक अंडाशय में पहुंचता है तो वे मिलकर युग्मनज बनाते हैं। दूसरा नर युग्मक ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म बनाता है जो आगे चलकर एंडोस्पर्म में विकसित होता है और बीज को अंतर्जात और बहिर्जात खतरों से बचाता है। यह अपने परिवेश में अंतर महसूस कर सकता है और बीज को निषेचन के लिए तैयार कर सकता है। एक परमाणु भ्रूणपोष, ये सबसे सामान्य प्रकार का पाया जाने वाला भ्रूणपोष है। यहाँ पेन साइटोकाइनेसिस के बिना बार बार विभाजित होता है, माइटोटिक डिवीजन। इसके परिणामस्वरूप कोशिका में बड़ी संख्या में मुक्त नाभिकों का निर्माण होता है। एक बड़ी केंद्रीय राजधानी बनती है और केंद्रक परिधि पर व्यवस्थित हो जाते हैं। चालाजल और माइक्रोपाइलर सिरे पर किनारों की तुलना में अधिक नाभिक होते हैं। इस अवस्था में कोशिका भित्ति का निर्माण परिधि से केंद्र की ओर होता है और बहुकोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है। उदाहरण मक्का, चावल, गेहूं, कपास, सूरजमुखी, नारियल में कोशिका भित्ति का निर्माण अधूरा होता है, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी बहुकोशिकीय ठोस भ्रूणपोष और भीतरी बहुकेंद्रीय मुक्त नाभिक वाला तरल भ्रूणपोष नारियल का दूध बनता है। दो सेलुलर एंडोस्पर्म, ये बहुत सामान्य नहीं है। इस प्रकार के विकास में PEN कैरियोकाइनेसिस का विभाजन साइटोकाइनेसिस के बाद होता है और अनुप्रस्थ विभाजन के कारण दो कोशिकाएं बनती हैं, जिससे चालाजल और माइक्रोपाइलर कक्ष का निर्माण होता है। आगे का विभाजन समान है, जिससे सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। उदाहरण पेट्यूनिया, बालसम, धतूरा। तीन हेलोबियल एंडोस्पर्म, इस प्रकार का एंडोस्पर्म विकास मोनोकोटाइलडॉन में सामान्य है। पहला विभाजन कोशिकीय भ्रूणपोष के समान होता है और इसके परिणामस्वरूप एक बड़ी माइक्रोपाइलर कोशिका और छोटी चालाजल कोशिका बनती है। कैलाजल कोशिका अधिकतर विभाजित नहीं होती है और आधार कोशिका के रूप में कार्य करती है। माइक्रोपाइलर कोशिका परमाणु भ्रूणपोष के समान आगे विभाजित होती है। तो हेलोबियल एक मध्यवर्ती प्रकार है जो परमाणु और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों का संयोजन है। उदाहरण अरे मूर्ज, अभ्यास प्रश्न, भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष के कार्य लिखिए, भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकार क्या है, परमाणु भ्रूणपोष क्या है।